आदरणीय अनागारिकाएं धर्म प्रेमी सज्जनों सन्नारियों हिमालय की इस पावन धरती पर तथागत की जन्मभूमि पर आओ थोड़ी देर धर्म की चर्चा कर लें। धर्म के नाम पर बहुत लोग उलझे रहते हैं। सही धर्म मिलना बहुत बड़े पुण्य की बात होती है, बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। मनुष्य जैसा अनमोल जीवन धर्म के नाम पर भटकने में ही बीत जाता है, खोजने में ही बीत जाता है, कुछ प्राप्त होता नहीं। मेरा अपना अनुभव बताऊं, एक बहुत कट्टर सनातनी हिंदू घर में जन्मा। घर का सारा वातावरण अध्यात्म से भरा हुआ है। घर के सारे लोग शील सदाचार में पुष्ट, बहुत अच्छे वातावरण में जन्मा, बहुत अच्छे वातावरण में पला, इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। लेकिन फिर भी एक तड़प रही भीतर, एक प्यास रही, एक भूख रही। धर्म के नाम पर जो कुछ कर रहा था उससे संतोष नहीं होता था। आज के 37 वर्ष पहले जब मेरी उम्र 31 वर्ष की थी तो मेरा भाग्य खुला, कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ। अपने गुरुदेव सियाजी उबाखिन की शरण गया और पहली बार 10 दिन का शिविर लिया, विपश्यना का शिविर लिया। पहले ही शिविर में यूं लगा जैसे अंधे को आंख मिल गई, प्यासे को अमृत मिल गया, दरिद्र को धन का भंडार मिल गया। तो क्या मिल गया? अध्यात्म की सारी बातें तो जिस परिस्थिति में जन्मा था, जिस परिस्थिति में पला था, वहां ये सारी बातें होती थी। क्या नई बात मिल गई? जाते ही गुरुदेव ने कहा, तुम्हें 5 शील लेने होंगे और कम से कम यहां 10 दिनों के लिए तो कड़ाई से पालन करना होगा। तो शील पालना कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि ऐसे परिवार में जन्मा, ऐसे वातावरण में पला जहां शील सदाचार को बहुत महत्व दिया जाता है, और यहां 10 दिन जहां आंख बंद करके ध्यान ही करना है, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं होगा, मौन रहकर काम करना है, तो शील पालन करना बड़ा आसान है। और ये तो 10 दिन की ही प्रतिज्ञा कराते हैं, तो क्या कठिन बात है? सचमुच कुछ कठिन बात नहीं लगी। ज्यादा से ज्यादा कोई शीलवान व्यक्ति जो अपने को शीलवान मानता है वो हत्या नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशा पता नहीं करता, चोरी नहीं करता, पर जाने अनजाने झूठ बोल जाता है। किसी बात को जरा बढ़ा चढ़ा के बोल देगा, किसी बात को जरा छिपा के बोल देगा, तो झूठ तो झूठ ही है। वहां तो मौन दिला दिया, 9 दिनों तक तो बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं तो कहां झूठ बोलने जाएंगे। अरे शील पालन करना बड़ा आसान है। उसने आकर्षित नहीं किया तो आकर्षित किसने किया? जो काम शुरू किया, काम शुरू करते ही जैसे भगवान बुद्ध ने और उनकी शिक्षा ने खींचना शुरू किया, चौथा दिन होते होते तो अभिभूत हो गया, अरे इसी की तो खोज थी। और कहे की खोज थी, इतने कम उम्र में ही बहुत अध्ययन किया, गीता का अच्छा अध्ययन किया, उपनिषदों का बहुत अच्छा अध्ययन किया, और केवल अध्ययन करके नहीं रह गया, वहां की धर्म सभाओं में इस विषय पर बहुत बोलता था, गीता पर बहुत बोलता था, स्थित प्रज्ञता पर न जाने कितना बोला, अनाशक्ति पर न जाने कितना बोला, बोलता तो बहुत था, लेकिन ईमानदारी के साथ घर में आकर के कभी कभी होश आता था तो रात को बिस्तर पर लेटे हुए, तकिए पर सिर रखे हुए आंसू बहाता था। अरे इतनी बात बोल आया स्थित प्रज्ञता की, स्थित प्रज्ञश्च का भाषा, कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, वो कैसे रहता है, उसका कैसा व्यवहार है, खूब समझाया लोगों को, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं रहता ना, मुझ में तो स्थित प्रज्ञता नहीं आई ना। वीतराग भय क्रोध हो, राग निकल जाए, भय निकल जाए, क्रोध निकल जाए, स्थित धीर मुनि उच्चते, जो मुनि लोग हैं उसी को स्थित धी स्थित प्रज्ञ कहते हैं, तो मेरा तो राग नहीं निकला ना, मेरा तो भय भी नहीं निकला। अपने आप को जांचता तो देखता कि अहंकार का पुतला, कितना अहंकार, छोटी सी उम्र में ही जीवन में सफलता मिलनी शुरू हुई तो जिस क्षेत्र में गया उसी क्षेत्र में सफलता मिली, बहुत धन भी अर्जित किया, उस देश के हिसाब से बहुत धन अर्जित किया, और जहां कोई संस्था, सामाजिक संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो, सांस्कृतिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, वहीं कहीं प्रेसिडेंट तो कहीं सेक्रेटरी तो कहीं ट्रस्टी, एक नशा, अरे मेरे जैसा धर्मवान कौन होगा, तभी तो लोग मुझको ट्रस्टी बनाते हैं, तभी तो लोग मुझको प्रेसिडेंट बनाते हैं, और दान देता तो इस अहम के साथ कि दूसरों ने कितना दान दिया बताओ पहले, तो उससे मेरा कुछ ऊंचा होना चाहिए, कितना अहंकार, ये सारा समझ में आता, मुझ में कितना अहंकार है, और क्रोध तो सीमा नहीं क्रोध की, इतना विकराल जब क्रोध आ जाए तो घर वाले मुझसे व्याकुल हो जाएं, बच्चे मुझसे व्याकुल हो जाएं, ऑफिस में जाएं तो ऑफिस का स्टाफ घबराए मुझसे, फैक्ट्री में जाऊं तो फैक्ट्री के काम करने वाले घबराएं मुझसे, ये कैसा आदमी है, और क्रोध करने के बाद फिर रात को सोचूं आज क्या किया मैंने, अरे इतना क्रोध किया, अहंकार के मारे किया ना, मेरी मनचाही बात नहीं हुई इसलिए क्रोध किया ना, कोई अनचाही बात हो गई इसलिए क्रोध किया ना, और जिस बेचारे पर क्रोध किया क्या सचमुच उसकी गलती थी? होश आए कि गलती किसी की हो, क्रोध तो करना ही है, ऐसा स्वभाव हो गया। एक उदाहरण से बताएं, जमीन पर कोई शाही की बोतल पड़ी, खुली बोतल पड़ी, और हम चलते हुए आए और ठोकर मार दी उसे, शाही खिंड गई, सारी जगह बिखर गई, जमीन खराब हो गई, अब हमारे गुस्से का ठिकाना नहीं, ये बोतल रखने की जगह है, ये शाही रखने की जगह है, और बोतल भी खुली रखते हो, अंधे हो, तुम्हें सूझता नहीं, चिल्लाऊं ही चिल्लाऊं। एक और घटना घटे, मैंने कोई ऐसी बोतल रख दी, किसी दूसरे आदमी ने ठोकर मारी और उसी तरह से बोतल उलट गई और सारा फर्श खराब हो गया, फिर भी मैं ही चीखूंगा, तुम अंधे हो, तुमको सूझता नहीं बोतल पड़ी है सामने और ठोकर मार दी तुमने, अरे गलती किसी की हो, क्रोध तो आएगा ही, ये सारा चिंतन चलता, कितना क्रोधी, कितना अहंकार और कितनी वासना। और बात धर्म की करूं, इतनी लंबी लंबी बात गीता की करूं, अनाशक्ति की करूं, वीत द्वेष की करूं, वीत राग की करूं, वीत मोह की करूं, स्थित प्रज्ञता की करूं, जीवन मुक्ति की बात करूं, मुझ में नामो निशान नहीं। बड़ा दुख होता था। भक्ति मार्ग में बहुत गहराइयों तक गया, बहुत गहराइयों तक गया। किसी तरह से भक्ति करने से किसी देवी की, किसी देवता की, किसी ईश्वर की, किसी ब्रह्म की मुझ पर कृपा हो जाएगी, मेरी इस भक्ति से कोई खुश हो जाएगा, मेरी इस विनती से कोई मुझ पर करुणा कर देगा। धन नहीं मांगता था, अपनी भक्ति में धन नहीं मांगा, अपनी भक्ति में कोई प्रतिष्ठा नहीं मांगी, कोई पद नहीं मांगा, मांगा यही कि मेरे विकार निकल जाए, यही सीखा था। खूब मांगा, खूब भक्ति की, खूब मांगा, खूब भक्ति की, खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता था, अरे मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती भाई, ये क्या मांगने का काम कर रहा हूं। दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, कोई परिश्रम करना पड़ता है, तो आदमी इज्जत के साथ अपना पेट भर सकता है। और अपने को निर्मल बना लेने का काम, अपने को मुक्त कर लेने का काम, अपने को स्थित प्रज्ञ अनासक्त कर लेने का काम, जन्म जन्म के भव चक्कर से छूट जाने का काम मांगने से हो जाएगा, ये कैसी बात है। पर और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई विधि नहीं, तो करें क्या। बस उस 10 दिन के शिविर ने रास्ता दे दिया, विधि दे दी। अरे उपदेश तो बहुत सुने थे, वही उपदेश है, कोई फर्क नहीं। लोभ मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, आसक्ति मत करो, चिपकाव मत करो, ये सारी बातें तो धर्म की बातें हैं। अपने यहां की सारी धर्म की परंपराओं में ये बातें भरी पड़ी हैं। नई बात क्या मिली? नई बात ये मिली कि यहां कोरा उपदेश नहीं है। उपदेश तो बहुत सुनते आए, बचपन से सुनते आए, झूठ मत बोलो ये बचपन से सुनते आए। लेकिन व्यापारी के घर में जन्मा, बनिए के घर में जन्मा, तो बचपन से ही देखता हूं, छोटी उम्र से ही दुकान में जाके बैठता था, तो बड़े बुजुर्ग और सारी बातों में बहुत शीलवान हैं, पर जहां व्यापार की बात आएगी वहां सुबह से शाम तक झूठ ही बोलेंगे। ओ तो बात समझ में आती थी उस समय कि ये झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ये उपदेश की बात है, व्यवहार में कैसे हो सकता है, काम धंधे में कैसे हो सकता है, यहां तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि झूठ कैसे नहीं बोलें इसकी कोई विधि नहीं थी। अरे अनचाही बात हो जाएगी, कोई आदमी गड़बड़ कर देगा तो क्रोध आएगा ही, ऐसे जस्टिफाई करते थे, न्यायीकरण करते थे अपने क्रोध का, इसलिए करते थे। कोई रास्ता नहीं है, चाहते थे क्रोध नहीं जागे, क्यों क्रोध करें हम, अच्छा कसूर उस व्यक्ति का ही है, क्रोध करने से हमें क्या मिला, हम व्याकुल हो गए, सारे वातावरण को व्याकुल कर दिया। खूब समझते थे, भगवान बुद्ध के पास जाने के पहले समझते थे, कैसे नहीं करें, अनचाही बात होती है क्रोध आई जाता है ना, मनचाही नहीं होती है क्रोध आई जाता है ना, कैसे नहीं करें, वासना जागती है कैसे नहीं जागे, अहंकार जागता है कैसे नहीं जागे। रास्ता नहीं था, कोई विधि नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, कोरे उपदेश ही उपदेश। बाप दादों से सुनते आए, पुस्तकों में पढ़ते आए, सुनने वाले इकट्ठे हो गए तो बड़े विद्वान बन करके, बड़े धार्मिक बन करके उनके सामने बड़ा लेक्चर दे दिया, व्याख्यान दे दिया, ऐसा स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देखो ये होने से ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। लोगों ने तालियां पीटी, वाह वाह, गोविंद का जी का क्या कहना, कितना धर्म को समझते हैं, कितनी धर्म की बात कह दी। अंदर से तो जानता था ना कुछ नहीं है, केवल ढोल की आवाज़ है जिसके भीतर पोल ही पोल है, अंदर कुछ नहीं है, ऐसा खूब जानता था। इसलिए एक तड़प थी। मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे अध्यात्म घर में जन्मा कि जहाँ अध्यात्म का महत्व तो था, तो तड़प थी भीतर से कि वीतराग कैसे बना जाता है, वीत द्वेष कैसे बना जाता है, स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, कोई व्यक्ति अनासक्त कैसे होता है, अहंकार को कैसे खत्म कर लेता है, कोई रास्ता होना चाहिए। रास्ता मिल गया। पहले ही शिविर में 10 दिन पूरे होने पर ऐसा नहीं हुआ कि मैं वीतराग बन गया, कि मैं वीत द्वेष बन गया, कि मैं अनासक्त बन गया, कि मैं मुक्त हो गया। नहीं, ये झूठ बात होगी। लेकिन राग निकालने का रास्ता मिल गया और निकलने लगा, क्रोध निकालने का रास्ता मिल गया और निकलने लगा, वासना निकालने का रास्ता मिला और निकलने लगी। अरे, विकारों को निकालने का तरीका मिल गया ना। यहाँ तो कोरा उपदेश नहीं है। मैं तो जब से सिखाने लगा अपने शिविरों में शाम को घंटे 1.5 घंटे बोलता हूँ। बोलने की पुरानी आदत है ना, तो इसलिए खूब बोलता हूँ और देखता हूँ। इसलिए बोलना भी ज़रूरी है कि मुझे तो ऐसे लोगों को समझाना है कि जो कि ऐसी परंपरा के लोग हैं जिन्होंने कभी बुद्ध की शिक्षा को समझाई नहीं, जाना ही नहीं, तो उनको जरा विवरण के साथ नहीं समझाऊंगा तो बेचारों के मन की शंका कैसे निकलेगी, संशय कैसे निकलेगा, काम कैसे करेंगे। ये उनसे काम करवाना है ना, तो बात उनको समझाते हैं तो इतनी देर बोलना पड़ता है। हमारे गुरुदेव को देखा कि वो शाम को मुश्किल से 15 मिनट बोलेंगे, या बहुत करेंगे तो 1/2 घंटा बोलेंगे, बस बहुत हो गया। अरे, बोलने में क्या पड़ा है, काम करना। तुम्हें नहीं समझ में आता तो पूछ ले, काम करना, जो कुछ हुआ काम करने से मिलेगा। तो मन बड़ा भाव विभोर हुआ कि यहाँ तो काम कराया जाता है, यहाँ बुद्धि विलास नहीं है, यहाँ वाणी विलास नहीं है, यहाँ काम करना है, तपना है, परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। और किस बात के लिए, अपने विकारों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना है। शील सदाचार का पालन करो, ये तो बुद्धि से भी समझ में आई हुई बात थी, हृदय भी स्वीकार करता था। शील सदाचार का पालन करो, मन ही वश में नहीं है तो कैसे पालन करो, मन को कैसे वश में करें, इसका कोई तरीका मिला नहीं। बहुत तरह के प्रयोग करके देखे, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं मिला कि जो मन में विकार पैदा होने के उद्गम स्थल तक पहुंचा दे, जड़ों तक पहुंचा दे। विकार कहाँ जागते हैं, जहां जागते हैं वहीं उन्हें नष्ट करना चाहिए। जिस बांबी में से नाग निकलता है, निकलते ही उसका फण पकड़ ले तो वश में आ जाएगा, बाहर निकल गया फण उठा लिया तो खतरा हो गया। यही होता है, विकार निकलता है हमारे भीतर से, अंतर मन से, और सिर पर चढ़ जाता है, क्या करें। तो कहाँ आरंभ हुआ, अरे 10 दिन की इस विद्या में ये मिल गया कि कहाँ आरंभ हुआ। ये भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी देन, सारे विश्व को बहुत बड़ी देन, सारे विश्व को मानो एक खोज करके ऐसा रतन दे दिया। कैसे अपने मन को वश में करो, शील सदाचार पालन करने का कोरा उपदेश नहीं है बुद्ध के पास। शील सदाचार कैसे पालन करो, राग दूर करने का, द्वेष दूर करने का, मोह दूर करने का कोरा उपदेश नहीं है बुद्ध के पास। कैसे राग दूर करो, कैसे द्वेष दूर करो, कैसे मोह दूर करो, एक तरीका है, और तरीका भी ऐसा वैज्ञानिक कि जिसको सब स्वीकार कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय भी ऐसी बात थी, वैज्ञानिक बात कहता है ना ये आदमी। जान तो पश्चतो भगवा धम्मंग देशेसी न अजान तो न अपश्चतो। उन्होंने स्वयं अनुभव करके देखा, ऐसा ऐसा होने से इमस्मिंग सती इदं होती, इमस्मिंग ऐसति इदं न होति। तो नियम है, धर्म नियमता है, ये कुदरत का नियम है, ये विश्व का विधान है। धर्म तो एक विज्ञान है, एक साइंस है जो सबके लिए एक सा है, नियम है जो सबके लिए एक से हैं। ये बात भगवान बुद्ध ने पहचान ली और ये लोगों के सामने रखी। कोशल देश का राजा प्रसेनजीत कहता है, उससे भगवान पूछते हैं, तो बार बार आके मेरे पांव पड़ता है, मेरे पांव छूता है, मेरे पांव चूमता है, अरे क्या इस शरीर में तुम्हें क्या मिलता है? महाराज क्या मिलता है क्या बताऊं, बहुत जगह भटका हूं, ऐसी बात कहीं नहीं मिली। कैसी बात कहीं नहीं मिली? आपके पास लोग आते हैं, मैं देखता हूं, मैं तो दुनियादारी का आदमी हूं, देखता हूं आपके पास लोग विवाद करने आते हैं, झगड़ा करने आते हैं, तुम हमारी ये मान्यता क्यों नहीं मानते, तुम ऐसा क्यों नहीं मानते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, खूब झगड़ने के लिए आएंगे। लेकिन जब आपकी बात सुनेंगे तो विवाद तो कहीं गया, प्रश्न पूछना भी भूल जाएंगे। कोई प्रश्न भी नहीं पूछता, क्या पूछेगा? जो बात कही वो इतनी वैज्ञानिक है, इतनी सही है, और अपने अनुभव की बात कही है, ऐसा अनुभव कोई भी कर ले, तब इसमें बहस करने की बात क्या, इसमें विरोध की बात क्या? तो सचमुच बुद्ध की वाणी, बुद्ध की शिक्षा इतनी वैज्ञानिक है। लोगों ने बावलेपन में उसे बिगाड़ दिया, ये अलग बात हुई, लेकिन मूल शिक्षा बुद्ध की इतनी वैज्ञानिक है, इतनी वैज्ञानिक है, अंधविश्वास को जगह ही नहीं। आज तक संसार का कोई धर्म गुरु यह कहने वाला नहीं आया कि मैं जो कहता हूं उसे तुम्हें मानने पड़ेगा। वो कहते हैं मत मानो, मैं कहता हूं उसे मत मानो, तुम्हारा कोई गुरु कहता है इसलिए मत मानो, उसे अपने अनुभव से जानो और कल्याणकारी लगे तो मानो, मानो ही नहीं फिर तो जीवन जियो, कल्याण हो जाएगा। और अपने अनुभव से जाना कि ये तो कल्याण की बात नहीं है, हानिकारक बात है, दूर रखो उसे, अपने अनुभव से जानो। केवल किसी गुरु ने कह दिया या किसी शास्त्र ने कह दिया या किसी परंपरा ने कह दिया या समाज के अधिकांश लोगों ने कह दिया इसलिए मान लोगे तो धोखे में आ जाओगे, धोखे के बाहर आओ। ऐसा कोई धर्म गुरु आज तक नहीं हुआ जो कहता है यही कहता हुआ आया कि मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं मानोगे तो नरक मिलेगा, मान लोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मेरी बात इसलिए माननी पड़ेगी कि मैं तो स्वयं परमात्मा हूं, परमात्मा का अवतार हूं, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें नरक जाना ही होगा। और कोई कहे मैं तो परमात्मा का पुत्र हूं, कोई कहे मैं तो परमात्मा का मैसेंजर हूं, मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। और ये कहता है मत मानो, मेरी बात बिल्कुल मत मानो, अनुभूति पर नहीं उतारोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई उनकी? रसगुल्ले का वर्णन ही करता चला जाए, रसगुल्ला कैसा होता है, जैसे स्थित प्रज्ञता का वर्णन करता था मैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, ऐसे रसगुल्ले का वर्णन करो कैसा होता है, बहुत सफेद होता है रसगुल्ला, बहुत सफेद होता है, अरे दूध का बना है ना तो दूध जैसा सफेद होता है, कहीं उसमें काली माँ नहीं है, अरे इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, बड़ा रसीला होता है, बड़ा स्पंजी होता है, बड़ा मीठा होता है, बहुत वर्णन किया करने वाले ने, वर्णन कर दिया, खुश हो गया वर्णन करके, देखो हमने कैसा समझाया रसगुल्ला कैसा होता है, सुनने वाले सुन के खुश हो गए, अच्छा रसगुल्ला ऐसा होता है, अरे न बोलने वाले ने चक्के देखा न सुनने वालों ने चक्के देखा, कहाँ उलझ गए रे। तो भगवान कहते हैं मानने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे निकम्मी बात दूसरी दुनिया में होती नहीं कि किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया, बड़ी निकम्मी बात है, किसी ने कह दिया और तुमने जान लिया, अनुभव पर उतार लिया, कल्याण हो गया रे। वो अनुभव पर उतारने वाली बात किसी ने नहीं समझाई, क्योंकि वो बेचारा जो बोल रहा है उसने भी सुनी सुनाई बात कही, उसके बाप ने भी सुनी सुनाई बात कही, उसके गुरु ने भी सुनी सुनाई बात कही, पढ़ी पढ़ाई बात कही, अनुभव तो किसी ने किया ही नहीं, कोई जानता ही नहीं इस प्रज्ञता कैसी होती है। अरे पहली बार ये पता लगा कि प्रज्ञा क्या होती है। स्थित प्रज्ञ होना तो प्रतिक्षण प्रज्ञा में स्थिर रहे, वो स्थित प्रज्ञ हुआ। इस साधना में से गुजरे तो पता लगा प्रज्ञा क्या हुई। अरे जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रज्ञा है, जो परोक्ष ज्ञान है वो तो ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है। किसी अन्य को अनुभव हुआ, किसी बुद्ध को अनुभव हुआ, तो वो बुद्ध का ज्ञान है ना, वो बुद्ध की प्रज्ञा है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान है। हमने तो केवल सुना और मान लिया, तो हमारे लिए तो परोक्ष ज्ञान हुआ ना, हमारा ज्ञान कहाँ हुआ? जब तक हमारा ज्ञान नहीं हुआ हमें क्या लाभ हुआ? तो बुद्ध कहता है बार 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 बार, जान पस जान, स्वयं भी जान तो उपस्थतो, स्वयं मैंने जाना है और अनुभव किया है, अनुभव करके मैं कहता हूँ जो बात कहता हूँ। किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता, कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कहता। और तुम्हारे लिए भी यही शिक्षा है, जान पस जान पस। ये जान पस नहीं करेंगे, अनुभव से जानने का काम नहीं करेंगे, तो हम बुद्ध के अनुयायी कैसे हुए? फिर तो बुद्ध के भगत हो गए। तो भगत चाहे राम के हैं, चाहे कृष्ण के हैं, चाहे मोहम्मद के हैं, चाहे ईसा मसीह के हैं, भक्ति है, अनुभव तो हुआ नहीं, श्रद्धा है, अच्छी बात है, श्रद्धा होना बुरी बात नहीं है। लेकिन श्रद्धा हमको अगला कदम उठाने नहीं दे तो अंदर श्रद्धा हो गई ना। श्रद्धा इसलिए होती है कि उससे आगे का कदम उठाएं। अच्छा भगवान बुद्ध ने कहा है, या मान लो किसी राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, मोहम्मद ने कहा है, कि क्राइस्ट ने कहा है, कि गुरु नानक ने कहा है, किसी ने कहा है, अब चल के देखें इसकी कही हुई बात को, अनुभव करके देखें, तब तो काम की बात हुई। अनुभव करें नहीं और मान लिया, बुद्ध ने कहा इसलिए मान लिया, महावीर ने कहा इसलिए मान लिया, कृष्ण ने कहा इसलिए मान लिया, किसी व्यास ने कहा इसलिए मान लिया, तो मान ही लिया, क्या मिला? क्या मिला? केवल मन को थोड़ा सा संतोष हो गया कि देखो हमने धर्म की बात कितनी समझ ली। अरे बुद्धि से ही समझी ना, अनुभूति से तो नहीं समझी ना। समझ लिया रसगुल्ला सफ़ेद होता, खूब समझ लिया। रसगुल्ला बड़ा रसीला होता, ये भी समझ लिया। बड़ा स्पंजी होता, ये भी समझ लिया। बड़ा मीठा होता, ये भी समझ लिया। मिला क्या उससे? जब तक उसको जबान पे नहीं रखा तब तक मिला क्या हमें? बुद्ध की यही विशेषता है कि उसने रसगुल्ला जबान पर रखा, ले खा के देख, और तुझे खाने का तरीका बताता हूँ, इस तरह से खाया जाता है। तो भाई श्री सदाचार की बात कर रहा था ना, तो बुद्धि से तो सब समझते हैं कि हमें सदाचार का जीवन जीना चाहिए, शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो, अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचे। आखिर कोई मुझे पीड़ा पहुंचाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं किसी दूसरे को क्यों पीड़ा पहुंचाऊं? सीधी सीधी बात है, सदाचार की बात यही है कि जो काम दूसरे तेरे प्रति करते हों और तुझे अच्छा नहीं लगता, कोई तुझे मारे, कोई तुझे तेरी चीज चुरा ले, कोई तुझे झूठ बोल के ठग ले, तेरे परिवार के किसी व्यक्ति से कोई व्यभिचार कर ले, तुझको कहाँ अच्छा लगेगा? तो तू ऐसा काम करेगा तो कैसे उनको अच्छा लगेगा? तो अपने समान औरों को समझ भाई, और तू ऐसा मत कर। ये उपदेश बुद्ध का कोई नया उपदेश नहीं था, इसके पहले में भी भारत भरा पड़ा था इस तरह के उपदेशों से, और उसके बाद भी इस तरह के उपदेश भारत ने सारे विश्व में सब जगह ये उपदेश भरे पड़े हैं। देखो शील का पालन करोगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नहीं पालन करोगे तुम्हें नरक मिलेगा, कोई नई बात नहीं। क्या नई बात बुद्ध ने बताई? क्योंकि उसने अनुभव किया है और गहराइयों से सच्चाई का अनुभव किया है। वो जान गया और जान करके कहता है, तुम किसी भी दूसरे आदमी को तब तक दुख नहीं दे सकते जब तक पहले अपने आप को दुख न दे दो। तुम किसी दूसरे आदमी की हानि तब तक नहीं कर सकते जब तक पहले अपनी हानि न कर लो। तो शील सदाचार इसीलिए कि औरों को हानि नहीं पहुंचाएं, औरों को दुखी नहीं पहुंचाएं। यह आदमी गहराई की बात करता है कि कोई भी शील भंग करेगा तो पहले अपनी हानि करेगा। मरने के बाद जो हानि होगी होगी, वो अलग बात, उसको नकारते नहीं, क्योंकि वो भी सच्चाई है, अपनी जगह है, उसका इतना महत्व नहीं है। महत्व वर्तमान का है, प्रत्युत्पन्न का है, इस समय क्या। मैं हत्या करूंगा तो मन में द्वेष जगाऊंगा ही, क्रोध जगाऊंगा ही। हंसते मुस्कुराते हुए किसी की हत्या कैसे करेगा कोई? और क्रोध जगाया कि दंड मिला प्रकृति से, कुदरत ने ऐसा दंड दिया व्याकुल बना दिया। क्रोध जगाए और व्याकुल न हो, ये हो नहीं सकता। ये सनातन धर्म है, एष धम्मो सनंतनो। क्रोध जगाएगा, कोई विकार जगाएगा, वासना जगाएगा कि अहंकार जगाएगा कि ईर्ष्या जगाएगा कि वैमनस्य जगाएगा, कोई विकार जगाएगा, एकदम व्याकुल हो जाएगा। प्रकृति का नियम है। और हम जब जब अपना शील सदाचार तोड़ेंगे तो पहले अपने भीतर विकार जगाएंगे, क्रोध जगाएं, लोभ जगाएं, वासना जगाएं, अहंकार जगाएं, कोई ना कोई विकार जगाएंगे, तब शरीर या वाणी से दुष्कर्म करेंगे। इतने कर ही नहीं सकते। तो कितना ठीक कहा उस महापुरुष ने, तुम पहले अपनी हानि करते हो रे, तब दूसरों की हानि करते हो। अपनी ओर देखा ही नहीं तो भगवान की वाणी समझ में कैसे आए, कैसे समझ में आएगी अपनी हानि क्या करते हैं? हमने उसको मारा तो वो मरा, हानि उसकी हुई, हमारी क्या हानि हुई? अरे मरने के बाद होगी तो कौन जाने इस बात को, हमारी क्या हानि हुई, हमको क्या दुख हुआ, हमें क्या पीड़ा हुई? हमने व्यभिचार किया, हमने झूठ बोल के किसी को ठगा, हमने किसी की वस्तु चुरा ली, हमारी क्या हानि हुई, उसकी हानि हुई? समझेगा ही नहीं ना। और जो तरीका दिया उन्होंने अपने भीतर देखने का, इसी को भी प्रश्न कहते हैं, अपने भीतर देखने का, देखते देखते बात समझ में आने लगेगी कि किस प्रकार विकार जागते ही भीतर व्याकुल हो जाता हूं। पहले नहीं समझ में आती, विकार जागता है तो जिस वस्तु को लेकर विकार जागा है, जिस व्यक्ति को लेकर विकार जागा है, जिस परिस्थिति को लेकर विकार जागा है, बस वही दिमाग में घूमेगी। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और विकार जगाए जा रहा हूं। मेरे भीतर क्या होने लगा ये देखा ही नहीं कभी, किसी ने देखना सिखाया भी तो नहीं, विद्या ही तो नष्ट हो गई। और बुद्ध ने ढूंढ निकाली वो विद्या, तेरे अंदर देख, जब भी हत्या करने का होवे तो पहले तेरे अंदर देख, तो देखियो बड़ा विकार जागा है। व्यभिचार करे तो तेरे अंदर देख, चोरी करे तो तेरे अंदर देख, बस जहां तेरे अंदर देख, ये सीख गया सब सीख गया, शील पालन करना आसान हो गया। अब उपदेश की बात नहीं है, अब केवल बुद्धि से समझने की बात नहीं है, अब केवल श्रद्धा से मानने की बात नहीं है, अब तो अनुभूति से जान रहा है। जैसे ही शील तोड़ूंगा, तोड़ने के पहले शील तो टूटेगा शरीर के कर्म से, वाणी के कर्म से, और मन का कर्म पहले जागेगा। मनोपभंगमा धम्मा, पहले जागा मन, और जागा और उसमें विकार पैदा कर लिए, और विकार पैदा कर लिए, सारा साइंस रख दिया सामने खोल करके। मनसा चे पदुठे ने भासति वा करोति वा, अपने प्रदुष्ट चित्त से मन में विकार जागा तो मन मैला हो गया, प्रदुष्ट हो गया तो क्या हो गया, तो हमारे पीछे दुख ऐसे लग गया, ऐसे लग गया जैसे बैलगाड़ी पर जुते हुए बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का लग गया। क्योंकि वो बैलगाड़ी से जुता है तो चक्के से भी जुता है, अब चक्का पीछे लगा है, जहां जाए चक्का साथ है, जहां जाए। लोगों ने अर्थ किया कि क्योंकि प्रदुष्ट मन से कोई वाणी का, कोई शरीर का कर्म कर दिया, तो उसके पास ऐसा कोई एक डेफिसिट, डेबिट अकाउंट उसके अंदर चला गया कि मरने के बाद उसको दुख मिलेगा। तो वो जो डेबिट अकाउंट की बात भीतर थी वो साथ साथ चल रही है। अरे नहीं समझे, नहीं बुद्ध को जरा भी नहीं समझे। प्रतिक्षण साथ चलता है, कैसे चलता है? मैंने क्रोध किया, क्यों किया? बाहर अनचाही घटना घटी। नहीं, बाहर की अनचाही घटना पर क्रोध नहीं किया तूने, बाहर की अनचाही घटना घटने पर तेरे शरीर के भीतर एक संवेदना जागी, और बड़ी दुखद संवेदना जागी। क्रोध तुझे उस दुखद संवेदना पर आ रहा है। उस समय के अपने यहां के जितने धर्म गुरु थे, उसके बुद्ध के समय भी जो धर्म गुरु थे, बुद्ध के बाद भी जो धर्म गुरु हुए, सब ने ये सिखाया कि ये जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, इनको लेकर के राग नहीं जगा लेना, इनको लेकर के द्वेष नहीं जगा ले। ये बुद्ध की नई शिक्षा नहीं थी, ये तो बहुत पुरातन शिक्षा चली आ रही है और आज भी चली आ रही, यही बात आज भी करते हैं लोग। बुद्ध ने क्या नई बात दी? बुद्ध ने नई बात ये दी कि हमारी आंख और बाहर का रूप, हमारा कान और बाहर का शब्द, हमारा नाक और बाहर की गंध, हमारी जीभ और बाहर का रस, हमारे शरीर की चमड़ी और बाहर का कोई स्पर्शव्य पदार्थ, हमारा मन और कोई चिंतन, इनका जब स्पर्श होता है, सलायतन पच्चया फस्स, स्पर्श हुआ और फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श होते ही ये लॉ ऑफ नेचर है, सारे शरीर में कोई ना कोई संवेदना जागेगी। वेदना पच्चया तनह, अब ये वेदना किस प्रकार की जागी, सुखद जागी तो राग जागेगा, तृष्णा जागेगी कि इसको संभाल के रखें, इसको रखें, ये और आए, बड़ी सुखद संवेदना जागी ना, तो और आए और आए और आए, और दुखद जागी तो द्वेष जागेगा, द्वेष की भी तृष्णा, इसे दूर करें, ये कैसे दूर हो जाए, अरे ये अच्छे नहीं, दूर हो जाए, दूर हो जाए, तो वेदना पर जागी। बहुत बड़ी खोज थी बुद्ध की, जो उसके पहले कोई नहीं जान पाया, कोई बुद्ध हुआ हो जाना होगा, लेकिन एक बुद्ध और दूसरे बुद्ध के बीच में इतना बड़ा अंतराल होता है, भूल जाते हैं लोग। बहुत बड़ी जीत थी कि वेदना समोसरना सब्बे धम्म, सब्बे धम्म वेदना समोसरना, धम्म किसको कहें, शरीर पर, मानस पर जो कुछ जागता है, मानस पर जो जागे, एक शब्द भी जागे, विकार जागेगा तो कहना ही क्या, क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, वासना जागे, अहंकार जागे, तब तो उसका कहना है क्या, जो अनुभव करेगा भीतर वो देखेगा, एक शब्द जाग जाए, शब्द भी जागेगा तो शरीर पर संवेदना शुरू हो जाएगी। ये माइंड और मैटर का इतना गहरा इंटरकनेक्शन है। आज के वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करने लगे कि अरे बुद्ध ने कितनी बड़ी खोज की, माइंड और मैटर का क्रॉस करंट कैसे चलता है, इंटर रिलेशन कैसे चलता है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि मन में कोई बात उठी तो शरीर पर एक संवेदना जागी। अब वो सुखद जाग सकती है, दुखद जाग सकती है, क्योंकि हम मूल्यांकन कैसा करते हैं, वैसे सुखद जागी हमने राग जगाना शुरू कर दिया, दुखद जागी हमने द्वेष जगाना शुरू कर दिया। अरे कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी वैज्ञानिक बात ढूंढ निकाली। ये केवल बौद्धों में तो नहीं होता ना, कि बौद्धों को सुखद संवेदना मिलेगी तो राग जगाएंगे, दूसरे लोग नहीं जगाएंगे, बौद्धों को दुखद संवेदना मिलेगी तो द्वेष जगाएंगे, दूसरे लोग नहीं जगाएंगे। अरे यूनिवर्सल बात है, सार्वजनिक बात है, सार्वदेशिक बात है, सार्वकालिक बात है, सनातन बात है, कि स्वभाव हमारे मानस का ऐसा ही हो गया कि जैसे ही सुखद की अनुभूति होगी वैसे ही चाहिए करने लगेंगे, और जैसे ही दुखद की अनुभूति होगी नहीं चाहिए करने लगेंगे, राग जगाएंगे, द्वेष जगाएंगे, राग जगाएंगे। हर आदमी ये करता है, हर प्राणी ये करता है, पर बेचारे को पता नहीं मैं क्यों करता हूँ, बेचारे को पता नहीं कि भीतर भीतर क्या हो रहा है, वो तो बाहर की बातें देख के सारा जीवन बिता देता है। बहुत करेगा तो चिंतन करेगा, बुद्धि से सोचेगा राग नहीं करना चाहिए, नहीं रे द्वेष नहीं करना चाहिए, कितना ही अच्छा क्यों ना लगे बाहर राग नहीं करना चाहिए, कितना ही बुरा क्यों ना लगे बाहर द्वेष नहीं करना चाहिए। तेरी बुद्धि कह रही है ना, तुझे अनुभव कहाँ हुआ, राग तेरे भीतर जागा इसको तूने कहाँ देखा। भगवान कहते हैं पस जान, देख और उस देख करके जान, तो अपने भीतर देख कहाँ जागा, ये सुखद संवेदना जागी ना, ये दुखद संवेदना जागी ना, अरे वेदना ही नहीं देखनी आई, तो बुद्ध की शिक्षा ही नहीं समझ में आए, यही तो देन थी उसकी, सारी दुनिया को बहुत बड़ी देन दी। जो लोग नहीं समझ पे आए वो खुद भी कहते हैं कि जिस समय मैंने वेदना को देखा और वेदना के प्रपंच को देखा और फिर उसको निकालना सीख गया तो पुब्बे अनुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुमुदपादि, अरे मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए रे, बुद्ध बन गया, उसी से बन गया, वेदना को देखते देखते बन गया। ये वेदना कितनी खतरनाक है, क्योंकि हम प्रतिक्रिया करते हैं, वेदना अच्छी लगती है राग की करते हैं, बुरी लगती है द्वेष की करते हैं, और किए जाते हैं। तो वो जो बात कही कि पीछे लग जाएगा दुख तुम्हारे, वो इसलिए कही कि शरीर में तो प्रतिक्षण या तो सुखद या तो दुखद संवेदना चलती ही रहती है, क्योंकि छह इंद्रियों पर कोई ना कोई घटना घटती रहती है, तो सुखद चली दुखद चली, आदत बना ली ना हमने। पहली बार जिस आदमी ने दुखद संवेदना के कारण द्वेष जगाया, दूसरी बार दुखद संवेदना आते ही फिर द्वेष जगाएगा, फिर दुखद संवेदना आते फिर द्वेष जगाएगा। पहली बार सुखद संवेदना पर राग जगा लिया, दूसरी बार सुखद संवेदना आई फिर राग जगाएगा, और सुखद दुखद ये तो चली रही है, तो राग द्वेष चल ही रहा है ना, तो दुख चल ही रहा है ना, बात ये कहना चाहते हैं वो, चल ही रहा है ना, चल ही रहा है ना, उस चक्के के पीछे, उस बैल के पीछे चक्का चल ही रहा है ना, चले प्रतिक्षण चल रहा है। अरे मरने के बाद जो आएगा आएगा, अलग बात। ये मरने की बात करने वाले तो और बहुत धर्म गुरु थे, ये मरने की बात करने में महत्व नहीं देता था, कहता तो था ये भी ठीक है मरने के बाद दुख आएगा। अब क्या हो रहा है? अरे अब भी दुख है, पच्युपन्न दुख, प्रत्युत्पन्न दुख। इस समय देख कितना दुख है तेरे भीतर, तो राग जगाया जा रहा है, दुखी हो रहा है, तो द्वेष जगाया जा रहा है, दुखी हो रहा है। तो इद तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति, पाप का काम शुरू कर दे तो यहीं तपना शुरू हो जाएगा, और तपते 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 मरने के बाद भी तपना ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति, जो प्रतिक्रिया नहीं करता तो भीतर बड़ा आनंद आता है, बड़ा मोद आता है, बड़ी प्रसन्नता आती है। वो क्षण, एक और तो हम ऐसा बनाए जा रहे हैं अपने मानस को कि संवेदना आते ही राग जगाए द्वेष जगाए, राग जगाए द्वेष जगाए, तो मन से दुष्कर्म किए जा रहे हैं, तो दुख हमारे पीछे लग गया, बैलगाड़ी के पीछे, बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का लग गया। लेकिन अगर संवेदना आई, सुखद हुई, हमने राग नहीं जगाया, अरे ये तो अनित्य है। दुखद आई, हम द्वेष नहीं जगाया, अरे ये तो अनित्य है, क्या द्वेष जगाएं इससे, देखते देखते खत्म हो जाएगी, क्या राग करें इससे, देखते देखते खत्म हो जाएगी, तो हमने राग नहीं जगाया, हमने द्वेष नहीं जगाया। जिस क्षण संवेदना को भी जान रहा है और राग भी नहीं जगा रहा, संवेदना को भी जान रहा है द्वेष भी नहीं जगा रहा, अरे बड़ा मूल्यवान क्षण है वो, जाने ही नहीं और कहे मुझ में राग नहीं है, झूठ बोलता है, उसे पता नहीं बेचारे को, जाने ही नहीं और कहे मुझ में द्वेष नहीं है, तो तेरे ऊपर ऊपर के मानस में राग नहीं है, तेरे ऊपर ऊपर के मानस में द्वेष नहीं है। ये ऊपर ऊपर का मानस तो भगवान ने कहा परित्त चित्त है, छोटा सा चित्त है केवल, क्या जानेगा रे ये, बाकी सारा मानस तो शरीर के संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, प्रतिक्षण जुड़ा हुआ है, और प्रतिक्षण राग करता है द्वेष करता है, राग करता है द्वेष करता है, उस बेचारे को शांति नहीं, उस बेचारे को सुख नहीं, तो लग गया ना पीछे दुख, बैलगाड़ी का चक्का पीछे लग गया ना, दुख का चक्का पीछे लग गया ना। और उन गहराइयों में जा करके जहाँ संवेदना महसूस हो रही है और वहाँ हम राग नहीं जगाएं, वहाँ हम द्वेष नहीं जगाएं, तो देखेंगे कितनी शांति मिली। अरे देख सुखद संवेदना जागी और हमने राग नहीं जगाया, मन बिल्कुल समता में स्थित है, संतुलित है, प्रज्ञा में स्थित है, जान रहा है ये अनित्य है, ये अनित्य है। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है समझ में आने लगा, देख दुखद संवेदना जागी, हमने द्वेष नहीं जगाया, हम तो समझ रहे हैं ये अनित्य है, ये अनित्य है, समता में है, प्रज्ञा में स्थित है, अरे ये स्थित प्रज्ञता होती है, इतनी शांति। तो ऐसे आदमी के पीछे सुख लग गया, वो सही सुख है, ये बाहरी सुख नहीं भीतर का सुख है, लग गया, क्योंकि अपना स्वभाव पलट रहा है वो। सुखद संवेदना आई राग नहीं जगाएगा, दुखद संवेदना आई द्वेष नहीं जगाएगा, समता ही जगाएगा, अनित्य है नश्वर है, अनित्य है नश्वर है, यही समझेगा, तो बहुत शांति मिली। अभी से लग गया और ये स्वभाव बार 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 बार, क्योंकि संवेदना तो बार 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 आएगी, हम जितनी बार संवेदना आती है हम देखते हैं समता में रहते हैं, देखते हैं समता में रहते हैं तो शांति में रहते हैं। इधनंदति पेच्चनंदति पुण्य कत पुण्यो उभयथनंद, अरे भगवान की वाणी कैसे समझ में आए, बिना अभ्यास किए बिना कैसे समझ में आए। वो कहती है सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोको उपकंपितो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की बहुत बड़ी खोज है। आज का वैज्ञानिक कितनी सदियों के बाद इस अवस्था पर पहुंचा है जब ये मानने लगा कि सारा का सारा विश्व, सारा का सारा भौतिक पदार्थ, द एंटायर मटीरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट वाइब्रेशन वाइब्रेशन, देर इज नो सॉलिडिटी एनीवेयर। ये बात बुद्ध ने कही, सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो, हम मान के रह गए, बुद्ध ने कहा है ना, इसलिए सारे संसार में केवल प्रकंपन ही प्रकंपन है, प्रज्वलन ही प्रज्वलन है, कंबर्शन एंड वाइब्रेशन, कंबर्शन एंड वाइब्रेशन, यही तो है, यही तो है। बहुत लेक्चर देंगे, बहुत बोलेंगे, लोगों से बहस भी करेंगे, क्या मिला रे तुम्हें, क्या मिला, तुमने देखा क्या अपने भीतर कंपन। इसी को भगवान ने कहा उदय व्यय जानते जानते तुम भंग ज्ञान जानोगे, भंग होगा तो शरीर की सारी सघनता नष्ट हो जाएगी। शरीर सघन रहे और हम कहें को भंग ज्ञान हो गया तो बुद्धि से हो गया, पागलपन की बात है, क्या हो गया। जब सारा का सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे, ठोस है ही नहीं, कहीं कुछ पकड़ने को ठोस नहीं है, तो भंग हो गया। सारा का सारा मानस घनीभूत होकर के आता था, क्रोध जागता था कितना घनीभूत होकर आए, वासना जागती थी कितनी घनीभूत होकर के आए, अहंकार जागता था कितना घनीभूत होकर के आए। अब वो देखते देखते तरंग ही तरंग, तो मानस भी तरंग ही तरंग, ये शरीर भी तरंग ही तरंग, रूप और नाम दोनों तरंग ही तरंग, तो बात समझ में आए ये भंग ज्ञान होता है। तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग, बहुत बड़ी खोज थी। आज का वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करता है, अपरेटस इस्तेमाल करता है, और उसके जरिए ये सिद्ध करता है कि सारे संसार में एटॉम्स हैं और हर एटॉम केवल वाइब्रेशन और कुछ नहीं है। उनके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई अपरेटस नहीं था। इंस्ट्रूमेंट और अपरेटस वाला आदमी कुछ नहीं प्राप्त करता, ये तो अनुभव से जान रहे हैं। जान पस्स, जान पस्स, जान तो पस्स तो भगवा धम्मंग देशे, जान करके अनुभव करके बोल रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोल रहे। कितना बड़ा फर्क पड़ गया। बार बार जब ये बात कहता हूँ कि ये सारा तरंग ही तरंग है, तो पश्चिम के एक वैज्ञानिक की बात याद आती है, डॉक्टर आल्वारेस, बर्कले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था फिजिक्स का, और उसे फिजिक्स पर नोबल पुरस्कार मिला। नोबल पुरस्कार किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को मिलता नहीं, किसी ने कोई बहुत बड़ा आविष्कार किया होगा तो उसको मिलता है, तो उसे मिला। तो किस बात पर मिला, तो पता लगा कि उसने इस बात की खोज की कि ये नन्ना सा नन्ना परमाणु कण, ये तो स्वीकार कर लिया पश्चिम के वैज्ञानिकों ने कि नन्ना सा नन्ना परमाणु कण भी सॉलिड नहीं है, सारी वर्ल्ड केवल तरंग ही तरंग है। तो ये नन्ना सा परमाणु कण, जिसे भगवान ने कलाप कहा, अष्टकलाप कहा, वो केवल तरंग ही तरंग है, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय। तो उस आदमी के मन में जिज्ञासा जागी कि एक सेकंड में कितनी बार उदय व्यय होता है। बड़ी मेहनत की एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसने देखा गिन करके कि एक सेकंड में ये नन्हे से नन्ना एटॉमिक पार्टिकल उदय व्यय लहरों की तरह उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। एक के आगे 22 बिंदी लगाएं, एक के आगे 22 बिंदी लगाएं, इतनी बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है एक सेकंड में। और भगवान बुद्ध ने अंतर्मुखी होकर के देखा और कहा, अनेक शत सहस्त्र कोटि, अनेक शत सहस्त्र कोटि, जितनी देर में पलक झपकूं या जितनी देर में चुटकी बजाऊं, तो एक सेकंड से भी कम हुआ, इतनी देर में अनेक शत सहस्त्र कोटि। क्या कह गए, शत कहते हैं 100 को, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, तो 1,00,000 हुआ, 1,00,000 बार कोटि 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 कोटि, और वो भी अनेक। अरे तो पहले पहले जब सुना तो यूं लगा कि उन दिनों की मुहावरे की भाषा होगी, इसलिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करते होंगे। फिर पता लगा कि बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, वो घनुभव करके बात करते हैं। तो सचमुच अनेक शत सहस्त्र कोटि बार ये नन्ना सा परमाणु उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ये बात उस डॉक्टर आल्वारेज ने भी जानी और यही बात बुद्ध ने भी जानी, लेकिन दोनों में कितना बड़ा अंतर। हमारे यहाँ आते हैं हर तरह के लोग, हर देश के लोग, तो कैलिफोर्निया के लोग भी आते हैं। उन्होंने जब ये बात सुनी और डॉक्टर आल्वारेज का नाम सुना, तो अपने देश वापस गए, तो उससे मिलने चले गए। तब वो जिंदा था, पिछले दिनों ही मरा, थोड़े दिनों पहले, उससे मिलने चले गए। तो देखा कि जैसे आम लोग हैं वैसे ही बड़ा तनाव से भरा हुआ, बड़ा गुस्से से भरा हुआ, बड़ा व्याकुल। अरे वही बात बुद्ध ने देखी और उसका सारा तनाव निकल गया, सारे विकार निकल गए और सर्वज्ञ हो गया। और इस आदमी को देखो कितना व्याकुल है। तो आए हमारे पास कि महाराज जी कैसी बात हुई, आप कहते हैं बुद्ध ने ये जान लिया और वो मुक्त हो गया, सारे दुखों से मुक्त हो गया, और ये तो नहीं मुक्त हुआ, यही बात इसने जानी। जानी नहीं, इसने मानी है केवल, इसका इंस्ट्रूमेंट कहता है और इसको इंस्ट्रूमेंट पर विश्वास है इसलिए मानता है। जाना कहाँ, अनुभव करना शुरू करे तो सारे विकार निकलते चले जाएं, निकलते चले जाएं। अरे बहुत बड़ी देन है बुद्ध के भाई। और ये जो इतनी बड़ी देन, इतनी वैज्ञानिक देन बुद्ध ने दी, उसका हम उपयोग नहीं करें और अपने आप को केवल बौद्ध कहें, तो भाई दुर्भाग्य की बात है। अपने आप को बौद्ध कह लेना आसान है, बुद्ध के भक्त हो जाना आसान है, बुद्ध के अनुयायी होना बड़ा कठिन है। और जो मिलेगा वो अपने को बौद्ध कहने से नहीं मिलेगा। अपने को बौद्ध कहने वाला व्यक्ति कल हिंदू कहने लगे, हिंदू कहने वाला व्यक्ति अपने को बौद्ध कहने लगे, हिंदू कहने वाला मुसलमान कहने लगे, मुसलमान वाला अपने को यहूदी, क्या मिलेगा इन नामों को बदलने में, क्या मिलेगा? अनुयायी हो गए, जैसा बताया बुद्ध ने वैसे चलने लगे, नाम चाहे सो, भले अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, क्या फर्क पड़ता है? आदमी है ना, चलना सीख गया, उस रास्ते पर चलने लगा, क्या रास्ता है? अपने भीतर देख, सारे शरीर में यह माइंड और मैटर का कैसे क्रॉस करंट चल रहा है, कैसे इंटरेक्शन चल रहा है। ये ऊपर ऊपर का चित्त अलग काम करता है, नीचे का चित्त बिल्कुल अलग काम करता है। ये बात अपने अनुभव से जानने लगेगा कि ये नीचे वाला जो चित्त है, जिसे अंतर चित्त कहा भगवान ने, जो अंतर्मन है, उसका काम शरीर की संवेदनाओं को जानते रहना और प्रतिक्रिया करना, जानते रहना प्रतिक्षण, रात और दिन ये क्रम चलता है। तभी कहा कि वो साथ चलता रहेगा चक्का, रात और दिन तुम सोए हो कि जाग रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन सोया है? ये ऊपर वाला चित्त सोया है, अंदर का चित्त कभी नहीं सोता, वो सदा जागता रहता है। लेकिन जागता किस बात पर है? शरीर पर संवेदना क्या हो रही है? रात को लेटे हुए हो, सोए हुए हो, गहरी नींद में हो, एक मच्छर ने काटा, इस परित्त चित्त को कुछ नहीं मालूम मच्छर ने काटा, ये तो सो गया। लेकिन जो अंतर चित्त है उसे तुरंत पता लगा, दुखद संवेदना हुई ना, मच्छर काटते ही दुखद संवेदना हुई ना, और वो संवेदना पकड़ता है, दुखद संवेदना हुई ना तो प्रतिक्रिया करता, मच्छर को उड़ा देता है या मार देता है मच्छर को, फिर भी संवेदना चल रही है तो खुजलाता है। ऐसा रात भर न जाने कितने मच्छर काटे और रात भर न जाने कितनी प्रतिक्रिया की। उस आदमी से पूछेगी तुमको रात को कितने मच्छर काटे, क्या बोलेगा? पता ही नहीं बेचारे को, क्योंकि उसका ऊपर का मन सोया हुआ है और नीचे का मन प्रतिक्रिया कर रहा है, इन दोनों के बीच में मोटी मोटी दीवार है, कैसे बोलेगा, क्या समझेगा? बुद्ध ने ये दीवार तोड़नी सिखाई। ये काम रात दिन चलता है, दिन में भी यही काम चलता है, ऊपर ऊपर का चित्त अपना काम करता है और नीचे का चित्त अपना काम करता है, दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार है। जैसे अभी बताए उदाहरण से ये बोल रहा हूँ, घंटा भर हुआ बोलते हुए मेरा मानस जो ऊपर का चित्त है, जिसे भगवान ने परित चित्त कहा, वो चक्कर लगाता है, अब क्या बोलना है, अब कैसे बोल करके इसको ख़त्म करेंगे, और वो चेहरा देखता रहता है सबका। मैं जो बोल रहा हूँ लोग समझ तो रहे हैं ना, कि किस तरह के लोग हैं, पता नहीं मेरी बात ही नहीं समझते, उनके सिर पर से जाती है बात तो सबको नींद आने लगे कि उबासी आने लगी, घड़ी देखने लगे तो जल्दी बंद कर भाई। ये सारा काम हमारा ऊपर का चित्त करता है, लेकिन जो भीतर वाला चित्त है उससे लेन देन नहीं, वो तो देखता है शरीर में संवेदना क्या हो रही है। बैठे बैठे इतने बड़े शरीर से, इतने भारी शरीर से कहीं भारीपन आया, वो झट कहेगा भारीपन आया, मुझे नहीं अच्छा लगता, जल्दी बदल, यूं कर लेगा, फिर थोड़ी देर के बाद यूं कर लेगा। देखो किसी आदमी को, भगवान ने कहा एक आदमी को जरा थोड़ी देर तक देखते रहो, बिंबसार आया उनसे मिलने के लिए, बहुत सुखी है, देश का राजा है, तो कहा देख कितना सुखी है, जरा ध्यान से देखो उसकी ओर। वो आध घंटे बैठेगा उतने में तो कितनी बार मचकेगा, कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, अरे बड़ा बेचैन है भीतर से, हर आदमी भीतर से बेचैन है, पता नहीं बेचारे को, वो तो ऊपर ऊपर वाले चित्त का खेल खेलता है, भीतर के चित्त को जानता ही नहीं। विपश्यना ये कराएगी, भीतर के चित्त को खड़ा कर देगी, जगा देगी, और जो काम ऊपर का चित्त बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ कर रहा है, और भीतर का चित्त बुद्धि की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, अंधा है, वो तो केवल प्रतिक्रिया करता है, सुखद लगा तो राग पैदा कर, दुखद लगा तो द्वेष पैदा कर, उसका स्वभाव कैसे पलटे? वो स्वभाव पलटने की विद्या दी बुद्ध ने, ये बीच का बैरियर निकाल दिया। जो बात नीचे वाले चित्त को मालूम होती थी, अब ऊपर वाले को मालूम होने लगी। विपश्यना करते करते चौथे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन सारे शरीर की संवेदना मालूम होने लगेगी, तो बीच का बैरियर निकल गया और उसको जानने लगे, और फिर अब उसको ट्रेन करने लगे, देख सुखद आई ना राग मत पैदा कर लेना, दुखद आई ना द्वेष मत पैदा कर लेना। तो राग और द्वेष का उद्गम मिल गया, उसका सोर्स मिल गया, कहाँ शुरू होता है ये मिल गया। बुद्ध की बहुत बड़ी देन है भाई, और इसे ही भुला दोगे तो सब कुछ भुला दिया, फिर अपने आप को बुद्ध कहने का कोई लाभ नहीं है। मुझे भगवान की शिक्षा से ये बड़ा अनमोल रत्न मिला, इस रत्न से मैंने देखा मेरा कितना बड़ा कल्याण हुआ, और पिछले 22-23 वर्षों से देखता हूँ सारे विश्व में हजारों लोगों का कल्याण होता है, हर वर्ष 20-25 हजार लोग इसमें से बैठते हैं, लाभ होता है, बैठते हैं, वैज्ञानिक बात है ना, सबको लाभ होगा। आग पर हाथ रखो, हाथ जलेगा, हाथ नहीं जला रहे आग पर हाथ मत रखो, पर आग पर हाथ कैसे नहीं रखें, मालूम होना चाहिए ये आग है, तो हम विकार कैसे नहीं जगाएं? मालूम होना चाहिए ना ये संवेदना है, संवेदना पर राग जागती है, संवेदना पर द्वेष जागता है, तो संवेदना ही नहीं जानेंगे तो राग से मुक्त कैसे होंगे, द्वेष से मुक्त कैसे होंगे? अरे बड़ी कल्याणकारी विद्या जो सबका कल्याण करती है जो भी धारण करें। तो इस धर्म सभा में आए हो और मैं अनुमान करता हूँ कि सब लोग नहीं तो अधिकांश लोग अपने को बौद्ध कहते हैं। मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने को धार्मिक कहे। भगवान बुद्ध ने किसी को बौद्ध नहीं बनाया, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं सिखाया, भगवान बुद्ध ने धर्म सिखाया। बौद्ध धर्म तो थोड़े से लोगों का होगा, बौद्धों का होगा, जैसे हिंदू धर्म हिंदुओं का होगा, जैन धर्म जैनियों का होगा, ईसाई धर्म ईसाइयों का होगा, मुस्लिम धर्म मुसलमानों का होगा, सिख धर्म सिखों का होगा, ऐसे बौद्ध धर्म बौद्धों का होगा। तो हमने धर्म का अपमान कर दिया ना। जो धर्म अपमानो धम्मो, अपमानो बुद्धो, अप्रमाण है, अपरमित है, उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सब पर लागू होता है ना, धर्म सब पर लागू होता है, उसको बौद्ध क्यों बनाओ भाई, उसको धर्म ही रहने दो ना। कहो ना धर्म है, हम धर्म के रास्ते चलने वाले हैं, हम अपने आप को धार्मिक कहें, धम्मिको, धम्मठो, धर्मिष्ठ कहें, धम्मचारी, धम्म विहारी, धम्मी, ये शब्द इस्तेमाल किए बुद्ध ने। सोचिए जरा, अपने को बौद्ध कह के बड़ा संतोष हो जाएगा, हम भगवान बुद्ध के भगत हैं, मिलेगा क्या? भगवान बुद्ध पर श्रद्धा होनी बहुत कल्याण की बात, हम उसका विरोध नहीं करते, समझ लेना चाहिए, लेकिन केवल श्रद्धा ही होके रह जाए तो हमारी श्रद्धा बांझ हो गई, को जन्म नहीं दिया उसने किसी को। श्रद्धा हो और उससे प्रज्ञा निकले तो बांझ नहीं हुई, तो प्रज्ञा निकले उसमें से, प्रज्ञा और शील, प्रज्ञा और ये श्रद्धा मिलती है तो बड़ा कल्याण होता है। तो भाई कहो अपने आप को, चाहे जिस नाम से कहो, भले बौद्ध ही कहो, हमको इस बात का हठधर्मी नहीं है कि अपने को धार्मिक कहो, लेकिन धार्मिक बनो तो। और धार्मिक तभी बनोगे जबकि अंतर मन की गहराइयों में जाकर के अपने अंतर मन के स्वभाव को पलटने का काम शुरू कर दोगे। वो नहीं पलटोगे तो ऊपर ऊपर से अपने को हजार धार्मिक कहो, एक हिंदू भी तो अपने को धार्मिक कहता है, एक मुसलमान भी अपने को धार्मिक कहता है, एक ईसाई भी कहता है, सिख भी कहता है, सभी अपने अपने कर्म कांड करके, अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता मान करके, अपने अपने पूजा पाठ करके कहते हैं बड़े धार्मिक हैं, बड़े धार्मिक हैं। बुद्ध ऐसा धार्मिक नहीं बनाता था, विकारों से छुटकारा पाने का काम शुरू किया कि धार्मिक बनने लगा। जितना जितना कर लिया उतना उतना धार्मिक हो गया, पूरा कर लिया तो पूरा धार्मिक हो गया, धम्मिको, धम्मठो, ऐसा हो गया। यही बनना है और इसी में कल्याण है। आज की इस सभा से एक ये बात सीख करके जाए कि हम केवल बुद्ध की प्रशंसा करके खुश नहीं होने वाले, हम केवल बुद्ध के बताए हुए मार्ग की प्रशंसा करके खुश नहीं होने वाले, हमको बुद्ध की बताई हुई शिक्षा जीवन में कैसे धारें, अनुभव पर कैसे उतारें, उन्होंने जो बार बार कहा जान पस्स जान पस्स, वो सचमुच हम कैसे जान करके, पस्स करके, विपश्यना करके कैसे जाने, तो हम सही माने में बुद्ध के भक्त हैं, क्योंकि सही माने में बुद्ध के अनुयायी हैं। जो जो आए हैं भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें और अपना कल्याण साधें, अपना मंगल साधें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साधें, विश्व के सारे दुखियारे लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।